सामाजिक स्तरण के सिद्धांतों में अब हम संकलनवादी या विभिन्न दर्शनग्राही विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले है मैक्स वेबर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मैक्स वेबर। बहुत सारे मार्क्सवादी के विरोधी समाजशास्त्री मैक्स वेबर को मार्क्स का एक विकल्प मानते हैं, लेकिन मैक्स वेबर ने भी मार्क्स के सभी विचारों का खंडन नहीं किया है। जैसे मार्क्स की तरह वेबर ने भी उस तथ्य को स्वीकार किया है कि आर्थिक आधार स्तरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक है, लेकिन इस विषय पर वेबर ने मार्क्स से थोड़ा आगे जाने का भी प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। वेबर ने कहा है कि किसी व्यक्ति का उत्पादन के साधनों या संपत्ति पर कितना नियंत्रण है, मात्र इसी आधार पर ही वर्ग निर्धारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति किस वर्ग में श्रेणीबद्ध होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि खुले बाजार यानी मार्केट प्लेस में उसकी योग्यता या सेवा की क्या कीमत है। किसी भी समाज में सभी सेवाओं का महत्व समान नहीं होता है। जैसे एक डॉक्टर एवं किराने की सेवा का समान आर्थिक महत्व नहीं होता है। अतः यह कहना कि मात्र संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर वर्ग निर्धारण होता है, यह सही नहीं है। पुनः मैक्स वेबर ने दलील दी है कि संपत्ति के अलावा शक्ति यानी पावर एवं सम्मान यानी प्रेस्टीज के आधार पर भी समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल को शक्ति का स्रोत माना है। उसी तरह प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज का स्रोत सामाजिक हैसियत है। कुछ समाजशास्त्रियों ने वेबर के द्वारा दल यानी पार्टी शब्द का प्रयोग करना गलत माना है। उनके अनुसार वेबर को पॉलिटिकल ब्लॉक या फंक्शंस जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। वेबर ने बताया है कि चूंकि दलों का संबंध शक्ति या सत्ता से है, इसीलिए इसके आधार पर भी समाज में स्तरण होता है। जैसे दलों का निर्माण कभी कभी जाति, प्रजाति, भाषा एवं धर्म के आधार पर भी होता है। इसीलिए स्तरण के निर्माण में इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम समाजों में सभी लोग समान रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं। दलों के माध्यम से समाज में शक्ति का संचार या उपयोग होता है। उसी के आधार पर व्यक्ति का समाज में राजनीतिक पकड़ या नियंत्रण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि दल या सत्ता के आधार पर भी लोग समाज में श्रेणीबद्ध या अस्तरित होते हैं। प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज के संबंध में उन्होंने बताया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत बराबर नहीं होती है। समाज के किसी समूह को प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त है तो किसी को कम। जैसे भारत में उच्च सरकारी पदाधिकारी यानी IAS एवं IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर इत्यादि लोगों को साधारण वेतनभोगी लोगों की तुलना में काफ़ी अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। उसी तरह से प्रतिष्ठा के आधार पर दलितों की तुलना में ब्राह्मणों को काफ़ी ऊंची सामाजिक हैसियत प्राप्त रही है। समाज में सामाजिक हैसियत कभी प्राप्त की जाती है तो कभी आरोपित भी होती है। जब कोई व्यक्ति कुलीन वर्ग या राजा महाराजा के खानदान में पैदा लेता है, तो समाज उसे जन्म के आधार पर उच्च सामाजिक हैसियत आरोपित करता है। जैसे इंग्लैंड, जापान, नेपाल, थाईलैंड, सऊदी अरब, इन सब जगहों में आज भी हम देखते हैं कि वहाँ के कुछ लोगों को जन्म से ही ऊंची सामाजिक हैसियत प्राप्त है। सामाजिक स्तरण में वे सबसे ऊंचे स्तर पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो जन्मजात नीची सामाजिक हैसियत वाले होते हैं, जिसे भारत में दलित या अछूत वर्ग यानी पेरिस ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि समाज किसी व्यक्तियों के समूह को कितना सम्मान की दृष्टि से देखता है, इस तथ्य पर भी सामाजिक स्तरण निर्धारित होता है। मैक्स वेबर ने हैसियत का विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने वाले एस्टेट जैसे व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया है। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी तो आमतौर पर लोगों को हैसियत जन्म से ही प्राप्त होती थी। कुलीन वर्ग में पैदा लेने वाले व्यक्ति हमेशा साधारण वर्ग यानी थर्ड एस्टेट की तुलना में ज्यादा ही सम्मानित माने जाते थे। वेबर ने बताया है कि सामाजिक हैसियत यानी सोशल स्टेटस दल यानी पार्टी एवं आर्थिक कारकों के बीच एक अंतः संबंध है। ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरण का निर्माण करते हैं। चूंकि इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक समाज में स्तरण का स्वरूप भी अलग अलग होता है। उनके अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर चार प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि हरालम बोस ने लिखा है। पहला, धनवान उच्च वर्ग, माफ करिए, जैसा कि हरालम बोस ने लिखा है, पहला धनवान उच्च वर्ग यानी प्रोपेरिटेड अपर क्लास, दूसरा धनहीन सफेद पोष कर्मचारी यानी प्रोपेरिटलेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, तीसरा निम्न मध्य वर्ग पेटी ब्यूरोक्रेसीज, चौथा मजदूर वर्ग मैनुअल वर्किंग क्लास। संकलनवादी या विभिन्न दर्शन ग्राही विचारधारा में दूसरा सिद्धांत है एरिक ओलिन ड्रायट का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ एरिक ओलिन ड्रायट। अमेरिकन समाजशास्त्री एरिक ओलिन ड्रायट ने मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित होकर वर्ग पर एक अलग विचार दिया है, पर इस विचारधारा में बहुत कुछ मैक्स वेबर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से वे उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका तर्क है कि आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक स्रोतों पर नियंत्रण का स्वरूप तीन प्रकार का होता है। पहला, निवेश या मुद्रा पूंजी पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट और मनी कैपिटल। दूसरा, उत्पादन के भौतिक साधनों पर नियंत्रण यानी भूमि, कारखाने एवं दफ्तर, कंट्रोल ओवर द फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड और फैक्ट्रीज एंड ऑफ फिशेस। तथा तीसरा, मजदूर वर्ग पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर लेबर पावर। पूंजीपति वर्ग के लोग अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जबकि मजदूर वर्ग के लोगों का नियंत्रण अपने ऊपर भी नहीं हो पाता है। यहाँ उन्होंने यह बताया है कि समाज में मुख्यतः दो ही वर्ग होते हैं, एक तो वे जो अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जिसकी चर्चा अभी ऊपर की जा चुकी है, और दूसरे वे जो मजदूर वर्ग के हैं। इन दोनों वर्गों के बीच एक तीसरा वर्ग भी होता है, जिसका स्थान पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत स्पष्ट नहीं होता है। वैसे लोगों का न तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है और न ही मजदूर वर्ग के ऊपर। मैनेजर, व्यावसायिक वेतनभोगी यानी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज एवं अन्य सफेद पोश वेतनभोगी व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज इत्यादि इसी वर्ग में आते हैं। पर मजदूर वर्ग के लोगों की तुलना में उत्पादन पर उनका नियंत्रण ज्यादा होता है, पर वे न तो पूंजीपति की श्रेणी में आते हैं और न ही मजदूर की श्रेणी में। उनमें दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं। राइट के अनुसार वैसे लोगों का चरित्र आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कॉन्ट्रेडिक्टरी क्लास लोकलाइजेशन होता है। इसमें तीसरा सिद्धांत है फ्रैंक पार्किन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ फ्रैंक पार्किन। राइट के विपरीत पार्किन का विचार मैक्स वेबर से ज्यादा और मार्क्स से कम प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। जिस हद तक वेबर ने मार्क्स के वर्ग संबंधी विचार को स्वीकार किया है, उस हद तक पार्किन ने भी उस विचार का समर्थन किया है। वेबर की तरह मार्क्स के इस विचार का उन्होंने भी समर्थन किया है कि संपत्ति पर प्रभुत्व या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। पर पार्किन ने यह कहा है कि संपत्ति बहुत सारे कारकों में से एक कारक मात्र है। पार्किन ने अपने वर्ग संबंधी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक समापन यानी सोशल क्लोजर की अवधारणा दिया है। उन्होंने बताया है कि मात्र संपत्ति के आधार पर ही हम दूसरे लोगों पर प्रभुत्व नहीं स्थापित करते हैं, बल्कि प्रजाति, भाषा और धर्म के आधार पर भी समाज में सामाजिक समापन पैदा होता है। अर्थात इसके आधार पर हम समाज में अपना अधिक नियंत्रण ही नहीं रखते, बल्कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अधिकारों या सुविधाओं से वंचित भी रखते हैं। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार या जीवन की सुविधा हो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में प्रजाति के आधार पर गोरे लोग सामाजिक समापन यानी सोशल क्लोजर का निर्माण करते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गोरे लोगों का समाज पर काले लोगों की तुलना में अधिक प्रभाव और नियंत्रण है। उन्हें बहुत तरह के अधिकारों या सुविधाओं से जानबूझकर वंचित रखा जाता है। अच्छी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने या किसी ऊंचे पद पर पहुंचने का समान अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं है। भारत में भी धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक समापन का स्वरूप अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। उच्च जातियों का दलितों एवं पिछड़ी जातियों की तुलना में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में कुछ ज़्यादा ही प्रभाव रहा है। नौकरी प्राप्त करने या किसी सेवा में आगे बढ़ने के समुचित अवसर से उन्हें वंचित रखा जाता है। इसी का नतीजा है कि आज भी भारतीय विश्वविद्यालय में 90% से भी ज्यादा प्रोफेसर उच्च जाति के हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संपत्ति के अलावा जाति, प्रजाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर भी समाज में वर्गों का या सामाजिक स्तरण का निर्माण होता है। पार्किन ने बताया है कि पैसे के आधार पर भी वर्ग का निर्धारण होता है। उन्होंने पेशागत संरचना को वर्ग संरचना की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर माना है। यदि किसी पेशे के लिए बहुत उच्च स्तरीय योग्यता की आवश्यकता है और उसके लिए बहुत कम लोग उपलब्ध हैं, तो वैसे पेशे के लिए पारितोषिक अधिक होता है। फलस्वरूप उन्हें समाज की उच्च श्रेणी में रखा जाता है। ठीक इसके विपरीत, यदि किसी पेशे के लिए बहुत लोग उपलब्ध होते हैं, तो पारितोषिक कम मिलता है और समाज में उसे निम्न स्तर पर रखा जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार पेशों के महत्व में कमी बेसी होती रहती है और उसी के अनुसार स्तरण के अंतर्गत उन पेशों की श्रेणियों में बदलाव आता रहता है। एक समय था जब ICS की नौकरी या वकालत का पेशा भारत में अव्वल दर्जे का माना जाता था। आज़ादी के बाद के दिनों में इन पेशों के महत्व में काफ़ी गिरावट आई है। प्रशासनिक एवं पुलिस सेवाओं के अलावा आज समाज में उन पेशों का अधिक महत्व है जिन पेशों में घुसखोरी या गलत आमदनी की संभावना काफ़ी अधिक होती है, जैसे राजनीति, व्यापार, उद्योग इत्यादि। अब हम सामाजिक स्तरण के प्रकार्य एवं दुष्प्रकार्य पर चर्चा करेंगे। फंक्शंस एंड डाइस फंक्शंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। H.M. जॉनसन ने स्तरण के कई प्रकार्यों एवं दुष्प्रकार्यों की चर्चा की है, जो इस प्रकार से है। प्रकार्य। पहला, जॉनसन ने बताया है कि स्तरण लोगों को जीवन में कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। समाज में साधारण से साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि वह समाज के ऊंचे स्तर पर पहुंचे, जिसके लिए उसे स्वाभाविक रूप से कठिन परिश्रम करना होता है। किसी उपलब्धि के अभाव में निम्न एवं मध्यम स्तर का व्यक्ति कभी भी उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा, समाज में व्यक्तियों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उसी के अनुसार विभिन्न किस्म के पेशों की व्यवस्था होती है। इस तरह से समाज में श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। लोग अपने गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस प्रकार स्तरण समाज में व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। तीसरा, विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार यानी रिवॉर्ड की व्यवस्था होती है। जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज उनकी प्रशंसा करता है एवं उन्हें ऊंचा से ऊंचा स्थान देकर अधिक से अधिक सम्मान देने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, वल्लभ भाई पटेल को सरदार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, जयप्रकाश जी को जयप्रकाश जी को लोकनायक इत्यादि सम्मानजनक उपाधि कुछ ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण है जिससे यह सीख मिलती है कि हम सभी को अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए। चौथा, कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि अस्तरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूंकि अस्तरण का आधार व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि होती है, इसीलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का संतोष रहता है कि उससे ऊपर स्तर का व्यक्ति उनसे ज़्यादा योग्य एवं सक्षम है। यदि लोग मनमाने ढंग से समाज में उच्च श्रेणी में स्थापित होने की कोशिश करें तो समाज में क्षोभ और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। पांचवा, स्तरण के द्वारा समाज में शक्ति संतुलन बना रहता है। जिन लोगों के पास जितना अधिक अधिकार होता है वे उतने ही ऊंचे पदों पर होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों की यही कोशिश होती है कि समाज में गलत लोगों का दबदबा इतना अधिक न बढ़े कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो। वे गलत काम करने वालों का हर संभव विरोध करते हैं। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर मात्र नियंत्रण ही नहीं रखते बल्कि समाज को दिशा निर्देश देने का भी काम करते हैं। अस्तरण के द्वारा लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो लोग समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हैं वे अपनी यथास्थिति बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता है कि उसके पद और सुविधा में कोई कमी आए। अपने पद को बनाए रखने के लिए वे लोग स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश करते हैं। सातवां, अस्तरण के द्वारा व्यक्तियों की स्थिति एवं भूमिका स्टेटस एंड रोल का निर्धारण होता है। व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के आधार पर उसकी भूमिकाओं का निर्धारण होता है। समाज मुख्य रूप से इन्हीं स्थितियों एवं भूमिकाओं के आधार पर निर्मित होता है। इन दोनों के अभाव में आधुनिक समाज वर्तमान स्थिति में कभी नहीं पहुंच पाता है। आठवां, अस्तरण के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी संभव होता है। अस्तरण के अभाव में सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चूंकि व्यक्तियों के जीवन में गतिशीलता की कुछ संभावना होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इस तरह कहा जाता है कि अस्तरण परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। इसी प्रक्रिया के चलते सामाजिक प्रगति भी होती है। दलित एवं पिछड़ा वर्ग के लोग समाज में ऊपर उठने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। चूंकि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उनके स्थान निम्न स्तर के रहे हैं, उनका परंपरागत निम्न स्तर उन्हें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता रहता है। नौवा, स्तरण के कारण ही समाज में एक किस्म की संरचना दिखलाई पड़ती है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंधों का निर्धारण स्तरण के नियमों से होता है। स्तरण समाज में एक सोपानिक व्यवस्था यानी हायरार्कियल ऑर्डर पैदा करता है। किसी व्यक्ति को किसी अच्छे काम के लिए कितना पुरस्कार या गलत काम करने के लिए कितना दंड मिलना चाहिए यह अस्तरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस तरह अस्तरण सामाजिक संरचना को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। इसे तकनीकी भाषा में प्रतिरूप अनुरक्षण यानी पैटर्न मेंटेनेंस का प्रकार्य कहा जा सकता है। दसवां, हर समाज के अपने कुछ आदर्श एवं मूल्य होते हैं। उन आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए ही समाज ने अस्तरण को जन्म दिया है। यदि बहुत अच्छे या जोखिम भरे कार्य करने के लिए विशेष पुरस्कार नहीं मिले तो कोई भी व्यक्ति उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। इसी तरह समाज विरोधी व्यक्तियों को सजा नहीं मिले तो वे हमेशा समाज में मूल्यों के विरोध में गलत काम करना चाहेंगे। 11, अस्तरण के द्वारा समाज में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों को बढ़ावा मिलता है। यह दो ऐसी चीजें हैं जिसके अभाव में न तो व्यक्ति और न ही समाज विकसित हो सकता है। आधुनिक समाज विकास के जिस वर्तमान अवस्था में पहुंचा है उसके पीछे प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष है। दुष्प्रकार्य डिसफंक्शन। पहला, अस्तरण के द्वारा समाज में निष्क्रियता की भावना को बढ़ावा मिलता है। जो लोग समाज के उच्च वर्ग में रहते हैं वे आमतौर पर संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उससे आगे जाने की बात नहीं होती है। उनके व्यक्तिगत गुणों में कमी आती है। उपलब्धियों के मुताबिक भूमिकाओं एवं गुणों में कमी आती है। इस तथ्य की पुष्टि पारेटो के संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण यानी सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स के सिद्धांत से भी होती है। यदि उच्च श्रेणी के लोग निष्क्रिय नहीं हों तो उनके नीचे गिरने का भय नहीं रहेगा। दूसरा, अस्तरण के द्वारा वर्ग चेतना का विकास होता है क्योंकि एक वर्ग में दूसरे वर्ग के प्रति पक्षपात की भावना होती है। चूंकि उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के बीच का संबंध शोषण पर आधारित होता है इसलिए अस्तरण के द्वारा स्वाभाविक रूप से वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। चूंकि वर्ग के आधार पर समाज में संघर्ष होता है इसीलिए कार्ल मार्क्स अस्तरण के विरोधी थे। मार्क्स के अनुसार शोषण मुक्त समाज के लिए अस्तरण मुक्त समाज होना नितांत आवश्यक है। समाज चाहे वर्ग पर आधारित हो या जाति पर, समाज में ऊपर तबके के लोग नीचे तबके के लोगों का शोषण करते रहे हैं। मार्क्स ने तो आर्थिक शोषण की बात कही है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत निम्न जाति के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक शोषण भी होता रहा है। तीसरा, अस्तरण के द्वारा समाज में निराशा और असंतोष की भावना फैलती है। जो लोग निम्न श्रेणी के हैं वे यह मानते हैं कि मेहनत के आधार पर हमेशा आगे बढ़ना कठिन काम है। लोग यही मानकर जीना पसंद करते हैं कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मिला। व्यक्ति इतना निराशावादी हो जाता है कि हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। चौथा, अस्तरण समानता का घोर विरोधी है। अस्तरण का सिद्धांत यह कभी स्वीकार नहीं करता कि समाज में सभी लोग बराबर हों। अस्तरण का सिद्धांत असमानता पर आधारित सिद्धांत है। डेविस एवं मूर ने अपने अस्तरण के सिद्धांत के संदर्भ में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इसका स्वरूप हमेशा प्रकार्यात्मक होता है, यह एक यथार्थ विरोधी सत्य है। पांचवा, अस्तरण एक व्यक्तित्व विरोधी संरचना है। इसके कारण यदि कुछ लोग मेहनत या छल प्रपंच से समाज में ऊपर उठने में सफल होते हैं, तो ठीक इसके विपरीत बहुतों को हतोत्साहित या जीवन भर निराशा की जिंदगी बितानी पड़ती है। निम्न वर्ग के बहुत लोगों के बीच हीनता का मुख्य कारण संभवतः यही है। इस प्रयास में बहुतों के व्यक्तित्व का विघटन भी होता है। खुले समाज में तो उतनी अधिक निराशा भले ही न हो, पर भारत जैसे बंद समाज में जहां अस्तरण का मुख्य आधार जाति रहा है, पिछड़ों एवं दलितों के व्यक्तित्व के विकास में काफी बाधा पहुंची है। यह सर्वविदित है कि जाति व्यवस्था ने लाखों करोड़ों पिछड़ों और दलितों का गला घोटने का काम किया है। अमेरिका जैसे खुले समाज में भी गैर गोरी दुनिया के लोगों के साथ अन्याय कोई कम नहीं होता है। समाज में व्याप्त अन्याय के कारण बहुतों को चोरी, डकैती एवं विभिन्न प्रकार के आपराधिक कार्यों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोग तो जीवन में इतने अधिक निराश हो जाते हैं कि वे पागल हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। अंत में हम यहाँ यही कह सकते हैं कि अस्तरण में जहाँ कुछ लोगों के जीवन में आशा की दीप जलते हैं, वहीं अधिकांश लोगों को निराशा और परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। समाज में उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अस्तरण की व्यवस्था लाभकारी तो है, पर निम्न श्रेणी के लोगों के लिए, जिनकी संख्या हर एक समाज में सबसे अधिक होती है, अस्तरण की व्यवस्था निश्चित रूप से दुष्प्रक्रियात्मक ही साबित होती है। किंग्सली डेविस एवं विल्बर्ट मोट जैसे समाजशास्त्रियों ने अस्तरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत के माध्यम से अस्तरण के दुष्प्रक्रियात्मक पहलू को छिपाने का एक षड्यंत्र किया है। असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कभी तो शांतिमय एवं स्वस्थकर नहीं हो सकता है। असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कभी भी शांतिमय एवं स्वस्थकर नहीं हो सकता है। वैसे समाज में हमेशा संघर्ष और अशांति की स्थिति स्वाभाविक रूप से बनी रहेगी।